ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. இஸ் பேஹத் டைமண்ட் ஹால் மே ஹம் சபி கே சமக்ஷ மே ஹமாரா தைவீ பிராதா ஜி ராஜூபாய் ஜி உபஸ்தித் ஹே. ஹம் ஜோர்தார் தாலியோன் சே பியார் சே ஸ்வாகத் கரேங்கே. ராஜூபாய் ஜி மதுபன் மே பேஹத் ரத்ன ஹே, பாபா கே விசேஷ் நூரே ரத்தன் ஹே, பிராமணோ கா ஜான் ஹே முரளி, ஔர் ஹம் சபி கோ முரளி படனே கே லியே, ரோஜ் முரளி சுன்னே கே லியே, முரளி டிபார்ட்மெண்ட் சம்பால் ரஹே ஹே ஆப், மாஸ்டர் முரளிதர் ஹே. ஔர் இஸ் யஜ்ஞ மே ஆப்கா விசேஷ் பார்ட் ஹே. வைசே ஆப் கான்பூர் யூபி கே பஹோத் சோட்டி ஆயோ மே பாபா கே பனே ஹே. 1972 சே ஆப் சமர்ப்பித் ரூப் சே மதுபன் பேஹத் கர் மே சேவாயே தே ரஹே ஹே. ஔர் தாதியோ கா அங்க சங்க மே ரஹ கர் கே அவ்யக்த பாப் தாதா கே சாத் விசேஷ் பாட் சல் ரஹா ஹே. ஔர் ஆப்கி விசேஷதா யே ஹே, ஜோ பாபா படா ரஹே ஹே படாயே, உஸ்கா படனே கே சாத் சாத் படானா. ஔர் பிராமணோ கே லியே பர்பூர் கஜானோன் சே ஜ்ஞான் ரத்னோன் சே பர்பூர் கர்னா. தோ பாய்ஜி கே சமக்ஷ மே ஹம் இத்தனா சுனேங்கே, பாபா நே இன்கி மெமோரி மே இத்தனா பரா ஹே. பாய்ஜி கி விசேஷதா ஹே, வோ 72 சே ஆஜ் தக் பாபா கே அவ்யக்த மஹாவாக்ய ஏக் பி மிஸ் நஹி கியா ஹே. தோ கித்னி பரா ஹுவா ஹோகா. ஹா, ஜோர்தார் தாலியோன் சே அபினந்தன் கர்னா ஹே. பாபா கே யஜ்ஞ மே சேவாயே தேனே கே சாத் சாத் பாபா கோ ஜோ பியார் சே யாத் கர்தே யோக் பட்டி ஹே, உஸ்மே பி கஹன் அனுபூத்தியா கராதே ஹே. தேஷ் விதேஷ் மே ஆப்னே பாபா கா சந்தேஷ் பஹுன்சாதே, சபி கோ பாபா கா இத்தனா நஸ்தீக் இத்தனி கஹரி அனுபூத்தியா யோக் தபஸ்யா மே கராதே ஆயே ஹே. ஔர் ஹமாரா ஜோ 20 விங் ஹே, உஸ்மே பி ஆப் கிராம் விகாஸ் விங் மே உபாத்யக்ஷ கே ரூப் மே சேவாயே தே ரஹே ஹே. கிசானோ கி பாய் பஹனோ கி ஆப் யோக்தான் சே கைசே சேவா கர்னா சிக்கா ரஹே ஹே. ஔர் விசேஷ் ஹம் பிராமணோ கோ பி யஜ்ஞ சே ஜ்ஞான் ரத்னோன் சே பாலனா தே ரஹே ஹே. ஐசே ராஜூபாய் சே ஆஜ் ஹம் சுனேங்கே விசேஷ் டாபிக பாப் சமான் பன்னே கே லக்ஷ. தோ லக்ஷ தோ ஹம்னே ரகா ஹி ஹே, லேக்கின் உஸ் லக்ஷ தக் பஹுன்ச்னே கே லியே ஹமே க்யா க்யா கர்னா ஹே, கிஸ் பாத்தோ கா அட்டென்ஷன் ரக்னா ஹே, ஔர் க்யா க்யா ஹமே பாலன் கர்னா ஹே, தியான் தேனா ஹே, யே சப் பாத்தோ கா ஆஜ் ஹமே பாய் சாப் விசேஷ் பிரகாஷ் டாலேங்கே, ஸ்பஷ்டீகரண் தேங்கே. ஹம் ஐசே மஹாரத்தி சே இஸ் விசேஷ் டாபிக் பர் சுனேங்கே ஆதரணீய ராஜூபாய் சாப் சே. ஓம் சாந்தி.
ஓம் சாந்தி. பாபா கே இஸ் பேஹத் கர் மே ஹம் சபி பாபா சமான் பன்னே கே லியே விசேஷ் லக்ஷ் லேகர் கே யஹாம் ஆதே ஹேன். பிரம்மா பாபா கைசே சம்பூர்ண் பனே ஔர் உஸ் சம்பூர்ணதா கா லக்ஷ் லேகர் கே உன்கே ஜீவன் மே கௌன் சே லக்ஷண் ஸ்பஷ்ட திகாயி தியே. பிரம்மா பாபா கோ தோ சாகார் மே மே சமஜ்தா ஹூன் இஸ் கிளாஸ் மே கோயி ஐசா நஹி ஹோகா ஜோ கஹே மேனே தேகா ஹே. கோயி ஹே பேட்டா ஹே சாகார் பாபா கோ ஜின்ஹோனே தேகா ஹோ? நஹி ஹே நா யஹாம். ஆஜ் பாபா 69 மே அவ்யக்த ஹுயே, ஔர் அவ்யக்த பன்னே கே பஹலே 68 மே விசேஷ் ஜோ பாபா கி சம்பூர்ணதா கே लक्षण दिखाई दे रहे थे उनके विषय में स्वयं बाबा ने ही अव्यक्त रूप में वर्णन किया है। हमारी दादियां भी वर्णन करती रही कैसे ब्रह्मा बाबा साकार में बच्चों के साथ खेलना बहलना सभी बच्चों से पर्सनल मिलना पत्रों का विशेष समाचारों का लेन देन करना। लेकिन जब बाबा कोई संपूर्ण बनने की धुन लगी बाबा ने एक साल के ही पुरुषार्थ में बहुत सी बातों से अपने आप को प्राम किया न्यारा किया। सेवाएं नहीं बंद की सेवाएं सब की लेकिन एक न्यारे और प्यारेपन का बड़ा सुंदर अनुभव कराया। बाबा के पास बच्चे आते अपनी ऐसी दृष्टि से नजर से उन्हें निहाल कर देते। कोई कितने भी प्रश्न लेकर के आए बाबा की दृष्टि से उसको सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। वो भूल जाता मुझे क्या पूछना है अभी। ब्रह्मा बाबा एकांतवासी बने और ऐसी तपस्या करते थे जो हाल हिस्ट्री हाल है पांडव भवन में उस हाल में घड़ी लगी हुई थी और घड़ी में एक छोटी सी चिड़िया बाहर आके घंटे बजाती थी चू चू करती थी। जब बाबा एकांत में बैठते थे तो इतना एकाग्रचित होते थे जो घड़ी की आवाज भी बाबा को पसंद नहीं आती। बच्चे इस बच्ची को यहां से हटा दो ये भी डिस्टर्ब करती है। इतना बाबा ने एकाग्रता का एकांत का अच्छा अभ्यास किया और सवेरे सवेरे अमृत वेले पांडव भवन में जो अभी ऑफिस बने हुए हैं वहां एक पहाड़ी थी छोटी सी उस पहाड़ी पर बाबा खड़े होते थे और लाइट हाउस बनकर के सब बच्चों को सकास देते थे। बच्चे सामने सब दृष्टि लेने के लिए बाबा को घेर करके खड़े हो जाते थे और बाबा वहां से ही ऐसी दृष्टि देते जो हर एक जैसे शरीर से अलग न्यारा है। बच्चे अगर कोई समाचार विस्तार से सुनाते तो बाबा कहते बच्चे क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो क्यों समय इसमें लगाते हो। सार रूप में बाबा उसका उत्तर देते विस्तार को सार में समेट लिया अपनी निराकारी निर्विकारी स्टेज बनाने के लिए विशेष तपस्या की। उपराम हो गए बेहद का वैराग्य था कोई भी साधन सुविधाएं बाबा ने स्वीकार नहीं की। लोग समझते थे बाबा के बच्चे सोचते थे कि बाबा जिस कमरे में रहते हैं बहुत छोटा सा कमरा है 3 सीट का होने के कारण ठंडी में बहुत ठंडी होती है बरसातों में पानी टपकता है बाबा की आयु बड़ी है बाथरूम बहुत दूर 3 सीट का बना हुआ है। तो जब हवाई महल बना जो एक बिल्डिंग सामने है बाबा के कमरे के मेडिटेशन हॉल के साथ में तो बच्चों ने बाबा को कहा बाबा अभी आप ये कमरा चेंज कर लो यहां आ जाओ। बाबा ने कहा ये तो बच्चों के लिए बनाया है इसमें बच्चे ही रहेंगे। बाबा तो पुरानी जुत्ती में आया है शिव बाबा पुरानी जुत्ती में आता है उसे पुराने घर में ही रहना है नए में बच्चे रहेंगे। इतना बाबा साधनों से उपराम, महिमा से उपराम, कई प्रकार की बातों से उपराम होते गए, न्यारे होते गए। चार बातों पर बाबा का विशेष फोकस रहा। एक तो सबसे बड़ा विघ्न शरीर का बंधन है आत्मा के आगे। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी तपस्या की, निराकारी स्थिति की, जो देहभान को गला दिया। देहभान क्या होता है, उससे न्यारे हो गए। दूसरा, देह के संबंध, संबंध दूर वाले नहीं लेकिन देह के संबंध माना, ये जो कर्म इंद्रियों का संबंध है आत्मा का, दृष्टि वृत्ति स्मृति, ये कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएं, कि कोई भी आकर्षण कोई कर्म इंद्रियों की आत्मा को आकर्षित न करे। ब्रह्मा बाबा ने इस बंधन से भी अपने को मुक्त कर लिया। साथ साथ कोई भी पदार्थ साधन, प्रकृति के साधन जो आत्माएं आज बहुत आकर्षित होती हैं, बाबा ने उन साधनों के बीच में सब कुछ प्राप्ति होते हुए भी साधना पर ध्यान दिया, साधनों से भी न्यारे हो गए, अनासक्त हो गए। अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, आदतें, उनसे भी न्यारे हो गए। तो ऐसी निराकारी स्थिति का अच्छा अभ्यास करने से वो संपूर्णता के चिन्ह बाबा के कर्म में दिखाई देने लगे। मुरलियों में भी आप सभी ने लास्ट मुरलियां जो चली हैं 68 की, उसमें बाबा ने गीत बंद करा दिए। बच्चे पढ़ाई में इन गीत कविताओं की क्या जरूरत है, पहले गीत बजता था फिर मुरली चलती थी, बाबा उसको स्पष्ट करते थे। धीरे धीरे बाबा ने गीत बंद करा दिए। बच्चे सवेरे सवेरे बाबा के कमरे में मुरली के पहले जाके गुड मॉर्निंग करते थे। बाबा ने उस गुड मॉर्निंग करने के लिए भी मना किया, बच्चे आवाज में आने की क्या जरूरत है। इस समय बाबा बच्चों के लिए भोजन बना रहा है, भोजन तैयार कर रहा है, आप बच्चे आकर के आवाज में गुड मॉर्निंग क्यों करते हो। आप समझ सकते हैं वो संपूर्णता के क्या चिन्ह होंगे, इसमें आवाज भी आवाज से परे ले जाने वाली बनी। एक ही महामंत्र बार बार रिपीट किया मुरलियों में, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, ऐसे याद नहीं करो। जब तक तुम आत्मा समझ करके मुझे याद नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सर्वशक्तियों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्मा बाबा ने उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन करके दिखाया। ऐसा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते करते उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। बोल में बाबा की अथॉरिटी बहुत थी। सत्यता को सिद्ध करने के लिए बाबा के बोल बड़ी अथॉरिटी के थे, लेकिन अथॉरिटी में नम्रता समाई हुई थी। बच्चे बच्चे कह करके कोई बात बहुत नम्रता के साथ बाबा ने बच्चों के आगे स्पष्ट की। कभी अहंकार के बोल सत्यता को कई बार कोई कोई सिद्ध करने लगते हैं, और सत्यता को सिद्ध करते करते जोश में आ जाते कि मैं सच्चा हूं ना, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। बाबा ने कहा, जो सच्चे होते हैं, जहां सच्चाई होती है वहां सभ्यता भी जरूरी है। कभी भी सत्य को सिद्ध करने के लिए जोश में आने की क्या आवश्यकता है। बाबा कभी भी जोश में आकर के, कितने बच्चों ने अवज्ञाएं की होंगी, शिव बाबा तो कहते हैं देखो मुझ पिता को कहां कहां बच्चों ने सर्वव्यापी कह करके कितनी मेरी ग्लानी की, कुत्ते में, बिल्ली में, कच्छ मच्छ में, सब में मुझे सर्व में व्यापक कह दिया। मैं सर्व आत्माओं का पिता, कल्याणकारी, बच्चे मुझे पुकारते हैं मैं आता हूँ, फिर भी मुझे कहते जिधर देखो उधर तू ही तू है, कितनी मेरी ग्लानी की। चलो शिव बाबा तो ग्लानी को परिवर्तन कर सकते हैं, बेहद में है, लेकिन ब्रह्मा बाबा की जो साकार में ग्लानी हुई, बाबा को न पहचानने के कारण बच्चों ने भी विरोध किया, नया ज्ञान होने के कारण, नई धारणाएं होने के कारण बाबा को कितना लोगों का सहन करना पड़ा, लेकिन बाबा ने हर बच्चे को इसी नजर से देखा, ये सब मेरे बच्चे निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि परवश हैं या पहचानते नहीं हैं। इस तरह से क्षमा का गुण शिक्षा के रूप में परिवर्तन किया, शिक्षाएं नहीं दी, लेकिन शिक्षा देने का स्वरूप था क्षमा कर देना। तो ब्रह्मा बाबा ने जिस प्रकार से अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, इतने बच्चे होते हुए इतना यज्ञ वृद्धि को पा रहा है, विस्तार हो रहा है, बाबा की कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंग की साकार में, इतने बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा हाल बनाना होगा, उनके रहने की व्यवस्था करनी होगी। बाबा खुद सब बातों पर ध्यान देते थे, इतने बच्चे तो थे नहीं। और लास्ट दिन जिस दिन बाबा को अव्यक्त होना है, दादी जी को विशेष बुला करके साथ में रख करके पूरा गाइड किया कि बाबा का ये प्लान है, यहाँ पर ये काम चल रहा है। उस समय पांडव भवन में ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, बच्चे इतने आएंगे, ट्रेनिंग होंगी, कन्याओं की यहाँ विशेष ट्रेनिंग होगी, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, टीचर्स की ट्रेनिंग कराने के लिए जो मुख्य बहनें रहेंगी उसके लिए यहाँ पर इंद्रप्रस्थ बनाना है, बहुत कुछ बाबा के साकार में प्लान थे। जहाँ मेडिटेशन हॉल बना वहां पर भी बाबा का बहुत अच्छा प्लान था, इतने सब बच्चे आएंगे कैसे रहेंगे, उनके लिए इतना सुंदर हॉल बनाना है। और सब कुछ होते हुए भी बाबा अंदर से उपराम होते गए। शिव बाबा का कार्य तो रुकता नहीं है, बाबा ये भी कहते थे बच्चे ये कार्य तो, ये कारवां तो रुकने वाला नहीं है, जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई है तब तक शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा इस कल्प के पॉइंट से बाहर नहीं जा सकते, चक्र के अंदर से बाहर नहीं जा सकते। अव्यक्त होने के बाद भी आज 53 साल बाबा को अव्यक्त होते हो गया, 53 ईयर्स, और अव्यक्त वतन में रह करके बाबा बच्चों की पालना कर रहे हैं। 48 साल तक हम सभी ने अव्यक्त बाबा की पालना ली है, 69 से 2017 31 दिसंबर तक बाबा हम बच्चों के बीच में साकार में आते रहे, अव्यक्त रूप में आते रहे। और उसके बाद बाबा ने जो पाठ परिवर्तन किया, अव्यक्त वतन में रह करके अपने बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए, अव्यक्त मिलन कराने के लिए इशारा करते आ जाओ बच्चे मेरे वतन में। और अगर कोई बहुत प्यार से केवल दो बातों का ध्यान रखता है, अव्यक्त अनुभव होने लगते हैं, अव्यक्त वतन की अनुभूतियां होती हैं, वो दो बातें हैं। अगर कोई व्यर्थ बातों से अपने को मुक्त कर ले, एक है व्यर्थ बातें और दूसरी है व्यक्त बातें। व्यक्त कारोबार की बातें, परिवार की बातें, लौकिक अलौकिक लेन देन की बातें व्यक्त हैं, और दूसरी जिनसे कोई कनेक्शन नहीं है वो व्यर्थ हैं। तो अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं अव्यक्त मिलन का अच्छा अनुभव करना चाहती हैं, कल अव्यक्त मिलन का विशेष दिन रखा गया है, आप केवल दो बातों पर ध्यान देना कि जो बातें व्यर्थ हैं मुझे न देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है। व्यक्त से और व्यर्थ से मुक्त रह करके अव्यक्त माना ही जहां व्यक्त नहीं है, न व्यक्त शरीर है, न व्यक्त संबंध है, न व्यक्त बातें हैं, सब बातों से आत्मा न्यारी हो जाए तो अव्यक्त वतन ये साकार वतन बन जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्णता के सब लक्षण साकार में प्रैक्टिकल अनुभव कराए, दिखाए। और मैंने साकार में अपनी दीदी मनमोहिनी को, दादी प्रकाशमणि जी को, दादी गुलजार जी को, दादी जानकी जी को, इन दादियों को बहुत समीप से संपूर्ण बनते हुए देखा है। वो संपूर्णता के इनके चिन्ह में आपको प्रैक्टिकल सुनाता हूं। ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण बने, उन्होंने अव्यक्त वाणियों में अपनी संपूर्णता के लक्षण सुनाए हैं, लेकिन दादियों को तो प्रैक्टिकल देखा। इतनी सारी कारोबार, दीदी मनमोहिनी के साथ मैंने 11 साल बहुत समीप पार्ट बजाया, 11 साल तक, 72 से 83 जुलाई तक। और जैसे माँ बेटे का संबंध होता है, इतना समीप जाना, बैठना, उनसे उनके साथ पत्र व्यवहार करना, हर बात आपस में जो भी बातें होती लेन देन करना। दीदी कंट्रोलर थी और बाबा ने मम्मा के बाद 65 में दीदी को अपने साथ मम्मा की सीट पर ही रखा था। पहले वो दिल्ली में सेवाएं करती थी, जब मम्मा अव्यक्त हुई तो दीदी मनमोहिनी को बाबा ने मधुबन में रखा। बहुत नियम मर्यादाओं में स्ट्रिक्ट कंट्रोलर थी, कोई भी एक दिन भी अमृत वेला मिस करे नहीं कर सकता है। सुबह और शाम का अमृत वेले का मुरली क्लास, अमृत वेला और नमाज शाम का योग, रात्रि क्लास, जो भी समर्पित भाई बहने थे सबके लिए कंपलसरी था। लौकिक में पढ़ाई नहीं हुई थी, दीदी पढ़ी नहीं थी स्कूल में जाकर के, लेकिन डायरी पेन लेकर के स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, दीदी शाम पहले पहले क्लास में कहती थी, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, सबसे आगे नंबर वन स्टूडेंट की तरह बैठ करके सब मुरलियों के प्रश्न उत्तर लिखती थी, प्रश्न बनाती थी अपने आप। सब कारोबार में एक एक बच्चे पर नजर थी, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किस चीज की आवश्यकता है, समर्पित लाइफ क्या होती है, एक एक को फुल ट्रेनिंग देती थी। दादी जी मुरली सुनाती थी, बाहर की सेवाओं में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, जहां भी जरूरत पड़ती थी, सम्मेलन है, कार्यक्रम है, विदेश जाना है, तो दादी जी का पार्ट, बहुत अच्छा स्पीकर थी, बहुत भाषण अच्छा करते थे, बाहर की सेवाओं का विशेष रोल दादी का था। लेकिन यज्ञ के यज्ञवत्सों की पालना, आने वालों की पालना, उनको हर नियम मर्यादा में दृढ़ता से चलाना, पालना देना, भाषणा देना, ये दीदी करती थी। लेकिन 82 जब ओम शांति भवन का निर्माण हो रहा था, दीदी संपूर्णता की ओर बढ़ने लगी। और वो संपूर्णता के चिन्ह ऐसे थे कि जो पहले हम उनके पास जाते थे, समाचार सुनाते थे, पत्र बताते थे, बड़े इंटरेस्ट से सुनती थी और उत्तर लिखवाती थी, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। लास्ट दिनों में कहती थी, छोड़ो सब, चलना है बाबा के पास, घर चलना है, घर चलना है, घर चलना है, धुन लगा दिया, बिल्कुल न्यारी प्यारी उपराम। कार्य रोका नहीं, लेकिन जैसे किसी की बातों में इंटरफेयर नहीं करना है। सब नाटक बहुत एक्यूरेट चल रहा है, सब अच्छे से अच्छा है, मुझे तो बाबा के पास जाना है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। धुन लगा दिया, वही उसी समय गीत बना, अब घर चलना है, अब घर जाना है। तो दीदी ने कुछ ही समय में अपने सब बातों उपराम हुई समेट लिया, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण किया और इसी महामंत्र से इतनी सब जवाबदारियां दीदी के ऊपर न्यारी हो गई, उपराम हो गई। छोटे से ऑपरेशन के लिए बॉम्बे में ले गए, डॉक्टर ने कहा थोड़ी सी गांठ है यहाँ पर, आंख में रोशनी नहीं आ रही है, अंधेरा हो जाता है, इसलिए इसका छोटा सा ऑपरेशन है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और उसके बाद दीदी चली गई, अव्यक्त हो गई। कहने का मेरा भाव है, ये आत्माएं साकार में रह करके इतनी सब सेवाएं करते, इतने संबंधों में आते, इतना सब विस्तार होते हुए भी अपनी सार स्वरूप स्थिति बनाई, उस निराकारी स्थिति का अच्छा अभ्यास किया और अभ्यास करते करते अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर लिया। दादी जी की बात सुनाता हूं। दादी जी की कारोबार जब दीदी अव्यक्त हुई तो इतनी प्लानिंग थी, इतना विस्तार दादी ने किया जो आप सब देख रहे हो। हमारी दादी प्रकाश मणि जी की देन है, उनका उमंग, उनका उत्साह सदा ही ऐसा रहता था कि ये करना है, ये करना, बाबा आज मुझे ये कह रहा है, आज ये कह रहा है। रोज बाबा के कमरे में जाना और बाबा के कमरे से उठते ही संदेश सुनाना कि बाबा ने आज मुझे ये कहा है, आज ये कहा। और पहले नंबर में मेरे को ही बुला करके ये लिखो, ये करो, ये करो, आज बाबा की ये बात है। ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ, दादी की अध्यक्षता में हुआ। फिर जब शांतिवन का ये निर्माण होने लगा, उस समय दादी जी ने बाबा के इशारे से ही, क्योंकि बाबा तो बड़े गुप्त रीति से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, जब वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, ज्ञान सरोवर इसीलिए बनाया था कि सब बच्चे वहां समा जाएं, लेकिन जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन वो छोटा पड़ गया। तो बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बच्चों को जब वृद्धि हो रही है तो यहां ही 94 में एक मेला किया जाए और उस मेले में 10,000 भाई बहनों को बुलाएंगे। टेंट हाउस बनाया, सारे टेंट लगाए गए शांतिवन में, लेटिन बाथरूम भी टेंट में, बाबा को भी टेंट में बुलाया। एक बिल्डिंग यहाँ थी, उसी बिल्डिंग में हम लोग थोड़ा बहुत जो यज्ञ का कारोबार था वो करते थे, बाकी सब टेंट थे। दादी का एक कमरा था जो उधर दादी क्वार्टेज है वो था। रात में बाबा आके गए और उसके बाद आंधी आई, तूफान आया, जोर से बरसात पड़ी, सब टेंट उड़ गए, सबके बिस्तर गीले, दादी की नींद फिटी। दादी कहती अरे अभी कैसे, इनको कहां पर इतने लोगों को, 10,000 लोगों को रखेंगे। जहां जो स्थान था सबको रात को चेक करके रखा गया। दूसरे दिन बाबा संदेश भेजते हैं गुलजार दादी के द्वारा, बच्चे तो वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, इनके लिए बड़े बड़े हाल बना दो और बाबा के लिए स्टेज बना देना, उस पर 3 सीट लगा देना। बस संदेश मिला और यहाँ का कार्य 95 में शुरू हुआ और 96 में ये डायमंड हॉल बन के तैयार हो गया, डायमंड ईयर में। दादी के अंदर जो प्रेरणाएं आती थी, जो टचिंग मिलती थी, बाबा का इशारा मिलता था करना ही है और सबका साथ, सबका सहयोग, सबके मदद से होगा, किसी एक पर डिपेंड नहीं किया। लेकिन 2003 के बाद अब दादी संपूर्णता की मंजिल की ओर बढ़ने लगे। मुझे याद आता है एक दिन दादी का इतना अच्छा अभ्यास था देही अभिमानी स्थिति का, जो देहभान क्या होता है उन्होंने गला दिया देहभान को। एक दिन हम दादी जी बिस्तर पर ही थी कमरे में, समय ठीक थी, इतनी कोई तबीयत ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन कमजोरी थी। और हम तीन भाई दादी को मिलने के लिए कमरे में गए। मैं उस दिन का अनुभव भूलता नहीं हूं, बार बार सुनाता हूं सबको। जब कमरे में हमने कहा दादी जी, और कोई नहीं था, अकेली दादी कमरे में थी, तो आवाज लगाई और जब अंदर प्रवेश किया तो दादी पहले बैठी थी, फिर खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के चारपाई से बाहर आके बिल्कुल अशरीरी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, जो बाबा कहता विदेही स्थिति, दादी ने ऐसे ऐसे हाथ किया और तीनों भाइयों को अपनी भाकी में ले लिया। और इतनी देर तक वो अनुभव कराया जो हम सब भूल गए कि हम भी कोई भाई हैं, ये बहन है। इतनी अशरीरी स्थिति क्या होती है, बहुत प्यार से ऐसे सिर पर हाथ फेरते, दृष्टि देते, अपनी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा दिया, भुला दिया शरीर क्या होता है। फिर बिठाया, बातें किया, बहुत एकांत में धीरे धीरे अपनी आवाज को शांत कर दिया। मिलने आओ, सिर्फ दृष्टि दे रही है, मुस्कुरा रही है, बोलती नहीं है, चुप। कई बार मेरे पर्सनल कारोबार बहुत थी दादी के साथ, लिखने की पढ़ने की जो भी कुछ होता था मैं पहुंच जाता था, अकेले में ही मेरे से दो शब्दों में उत्तर देती थी, लिख लो जाके, कर लो जाके। एक बार दादी को बॉम्बे से ले आए थे हॉस्पिटल से, दादी ऐसे ही बिस्तर पर बैठी थी, मैं पहुंच गया, अकेले ही गया। हमने कहा दादी आज मुझे एक संकल्प आता है, अब संपूर्णता की निशानी बताता हूं मैं। कहती क्या संकल्प आता है? दादी बहुत दिन हो गए, आपका पत्र है, आपके नाम से मैं लिखता हूं, आपने मुझे सिखाया है, मैं भेजता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। कहती क्यों ठीक नहीं है? मैंने तुमको जवाबदारी दी है, तुम बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा, ऐसे बहुत प्यार से बोलने लगी। मैं नहीं दादी, आपको कुछ लिखाना पड़ेगा, आप लिखाओगी तो मैं लिखूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। तो बहुत प्यार से मेरे को समझा रहे थे, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा लिखता है। दादी गुलजार आई सामने, उसी समय आ गई कमरे में ही, तो गुलजार दादी बड़े हंसते हुए दादी को बोलती है, दादी आज दोनों क्या रूह रियान कर रहे हो? तो दादी गुलजार दादी कहती है, गुल आज ये जिद कर रहा है, कहता दादी पत्र लिखाओ, पत्र लिखाओ। अरे इतना अच्छा लिखता है, दादी के बिल्कुल शब्द लिख देता है, आज ये कहता लिखाओ लिखाओ, इसको लिखना चाहिए अपने आप। तो गुलजार दादी तो बड़ी रमणीकता से बोलती, दादी लिखाना तो चाहिए आपको। अब जब दादी जी ने कहा लिखाना तो चाहिए आपको, तो चुप हो गई एकदम। मेरे को कहते अच्छा लिखो। अब मेरे पास तो डायरी पेन था, मैं लेके गया था, लिखना शुरू किया। हमने कहा दादी बोलो। तो पहली लाइन बोलती है, लिखो दादी 100% ओके है। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। कहती क्यों नहीं लिखेगा? दादी 100% ओके लिखूंगा तो और झूठ, हम ही झूठे हो जाएंगे। आप बिस्तर पर हैं, क्लास नहीं करा रही हैं, ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है, और मैं लिखूं आप 100% ओके हैं? कहती मेरे क्या हुआ है, बड़े नशे से बोल, मेरे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ओके हूं, मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई दर्द है, बिल्कुल ठीक हूं। ये तो डॉक्टरों का कुछ चक्कर है, ये कोई हॉस्पिटल का हिसाब किताब है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। जरा भी शरीर की बीमारी का भान नहीं, एक शब्द भी ये नहीं था कि मैं कोई दर्द में हूं, बीमार हूं। इतनी एकदम न्यारी प्यारी स्थिति, मुझे तो बाबा की दुआएं हैं, परिवार की दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं। ये संपूर्णता के चिन्ह थे। जरा भी शरीर का भान नहीं, बीमारी का वर्णन चिंतन नहीं, बस बाबा 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 कहने का मेरा भाव है। हम सब संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लक्ष्य रखते हैं, लेकिन जब तक हदों से हम पार नहीं जाएंगे, कई जगह पर अभी भी हदें बना करके रखी हैं, मेरे मेरे की बहुत हदें हैं, इतना बड़ा यज्ञ, इतनी बड़ी कारोबार, इतनी बड़ी जवाबदारियां, सब कुछ होते हुए भी ये दादियां हदों से पार चली गई, बेहद में चली गई, एकदम जरा भी मैंपन का नामो निशान नहीं रखा। एक दिन और मैं बैठा, ऐसे बैठी थी, मैं गया दादी पांडव भवन ज्ञान सरोवर, नहीं गई दो साल तीन साल तक, ऊपर बैठी थी एकांत में, मैं ऊपर से आया, अकेले बैठी थी आंख बंद करके, मैं भी बैठ गया। बहुत देर तक देखा है तो बोलती नहीं, देखती नहीं, तो मैंने थोड़ा हाथ हिलाया, दादी क्या है, ऐसे कर क्या है दादी, कुछ अनुभव सुनाओ ना, क्या कर रही थी आप? कहती अच्छा ये बता, ऊपर सब ठीक चल रहा है? तो मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं क्यों कहूं कोई बात है? कहती है ज्ञान सरोवर सब ठीक है? मैंने कहा हाँ दादी ठीक, पांडव भवन में सब ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है। बहुत सारी बातें पूछती गई, पूछते हमने सब में हाँ हाँ किया, तो अचानक पूछती कैसे ठीक है? तो मैंने कहा दादी आप यहां बैठी है ना, आपके शुभ संकल्प से, आपकी भावनाओं से, आपके पवित्र आभा मंडल से सब बहुत अच्छा चल रहा है, क्यूरेट चल रहा है। तो मेरे को ऐसे आंख दिखाती है, क्या बोला? कहती है इम्ठा ये बात कहता मेरे से चल रहा है सब, बाबा को भूल गया? तो बाबा सब कुछ करा रहा है, बाबा बैठा है, बाबा करण करावन हार है। जरा भी अंश मात्र भी मैं नहीं था, महिमा स्वीकार नहीं की उन्होंने, ये संपूर्णता के लक्षण है। अभी भी अगर कोई की महिमा न हो, कोई को थोड़ा मान न मिले, शान न मिले, क्या हो जाती स्थिति? मूड ऑफ हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है। और इन दादियों ने मान शान महिमा तेरे मेरे को सबको मार दिया, तब संपूर्ण बनी, एकदम निमित्त नम्रचित निर्मल वाणी, एकदम निर्माणता का अवतार, नम्रता का अवतार। जरा भी कहीं उनके अंदर ये नहीं दिखाई देता था मैं संस्था की हेड हूं। कई बार कहती थी जिस दिन मैं अपने को हेड समझूंगी ना, उस दिन मेरे को हेडक हो जाएगी, ये मेरे थोड़ी है सब, बाबा की रचना है, बाबा का काम है, बाबा बैठा है, वो कराने वाला है, मैं कहां से हेड बन गई? आज हेड बनने के लिए लोग कितना पीछे लगते, मैं किसी डिपार्टमेंट का हेड बन जाऊं, सेंटर का हेड बन जाऊं, जोन का हेड बन जाऊं। और दादियां हेड होते हुए कभी भी अपने को हेड नहीं समझा, हेड तो वही है, वही के, उसी की लीला चल रही है। जानकी दादी क्या कहती थी? प्रभु लीला चल रही है। एक दिन मेरे को बुलाया जानकी दादी ने, कहती है राजू आज मेरा विल लिखो विल। विल क्या करेंगी, आपके पास कुछ है क्या? कहती नहीं तुम लिख, मैं लिखवाती हूं, मेरा विल लिखो। अब अकेले बैठा था, हमने कहा अच्छा लिखाओ, क्या है आपके पास विल, क्या करेंगे विल? कहती है जब मैं शरीर छोड़ू ना, तुम लिखो, जब मैं शरीर छोड़ू तो कोई को भी यहां आने की जरूरत नहीं है और कोई भी फूल माला लाने की जरूरत नहीं। अब वो शब्द जब बोले तो मैं कहने लगा दादी ऐसा कैसे होगा, आप संस्था की हेड है इस समय, आप शरीर छोड़ेंगी, आपके शरीर छोड़ने पर कोई नहीं आएगा, कोई फूल माला आपके ऊपर नहीं चढ़ाएगा। कहते तुम लिख, लिख लिया, लिख लिया। थोड़े दिन के बाद जब शरीर छोड़ा है तो सचमुच वही हालत थी, न कोई मिलने आया, न देखने आया, न फूल लेके आया, आ ही नहीं सकता था कोविड में। 18 तारीख को लॉकडाउन हुआ, मार्च 18, 2020 में, और 20 तारीख को फुल लॉकडाउन के अंदर दादी अभ्यक्त हो गई। बड़ी मुश्किल से चार धाम कराए, समझा करके अधिकारियों को शांतिवन में लाए, यहाँ रहने वाले, यहाँ चारों तरफ रहने वाले सामने नहीं आ सकते थे, केवल 20 लोगों को छुट्टी, 25-30 थे शायद अंतिम संस्कार में। लास्ट में मैंने कहा मैं तो माला चढ़ा के आऊं, वो भी चंदन की माला, फूल की माला नहीं। जो कुछ उन्होंने विल किया था, लिखाया था, वो प्रैक्टिकल सीन देख करके मुझे वो दृश्य याद आया कि मैंने विल किया था। आप सब समझ सकते हो संपूर्णता किसको कहते हैं। जो संकल्प उठे वो सिद्ध हो जाए, उनके अंदर वो विल पावर थी, वो संकल्प शक्ति थी, जरा भी कहीं भी मैं शब्द नहीं था। यहां तक जब प्रशासन का पूरा कार्य विदेश संभालती थी, लेकिन जब देश की सेवाओं की जवाबदारी आई, बार बार कहती थी बाबा ने सबको वीजा दिया, अपने पास बुला लिया, मेरे को वीजा नहीं देता है। तो हम कहते थे हंसते हंसते, दादी आपको वीजा मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा, मैं यही बैठूंगी क्या? हम कहते दादी आप बैठी है ना, तो बाबा का भंडारा भंडारी सब भरपूर है, आपकी दिल इतनी बड़ी है जो आज सब भंडारे भरपूर रहते हैं। कहती हो तो बाबा चला रहा है ना, मैं थोड़ी कर रही हूं, ये तो प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला। भंडारे की तरफ चक्कर लगा के आती थी, देखती इतना भंडारे भोजन बन रहा है, हजारों बाबा के बच्चे आ रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, कोई किसी को बता ही नहीं रहा क्या हो रहा, सब चल रहा है, ये प्रभु लीला चल रही है। सब कुछ करते हुए अकर्तापन की जो स्थिति थी, जो बाबा कहता है कर्म करते हुए भी जो कर्म के बंधन में नहीं बंधता है वो कर्मातीत बन जाता है। हमारी दादियां ने कर्म सब किए, लास्ट तक किए, कोई कर्म नहीं छोड़ा। लास्ट पत्र जो लिखाया, मैं आपको बताऊं, मार्च में उन्होंने शरीर छोड़ा है और अप्रैल का पत्र कुछ मैंने पास कराया उनसे और फोन पर पास कराया। एक दिन मेरे को हॉस्पिटल से फोन करवाती है हंसा से, राजू से मेरी बात कराओ, और मैं था विजयवाड़ा में। दादी कहती तुम मेरे पास आ सकता है क्या? ना दादी, दो दिन लगेगा, दो दिन के बाद मेरी टिकट है। दो दिन? दादी का चुप हो गई। तुमने जो पत्र लिखा है बहुत अच्छा है, अप्रैल का बहुत अच्छा है, हमने पढ़ लिया है, तुम भेज देना, जब आना तो मिल लेना। और जब मैं आया तो दादी को आईसीयू में रख दिया। उसके बाद फिर मिलना इतना नहीं हुआ, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जब संदेश में संदेशी गई तो मेरे को वहां से याद करी, भेजी कि राजू को याद देना जा करके, उसने जो लिखा था वो ठीक है। कहने का भाव मेरा, ये आत्माएं इतनी यज्ञ के प्रति वफादार, यज्ञ के प्रति समर्पित, सब कुछ जवाबदारी होते हुए भी कहीं पर भी मेरेपन का नाम निशान नहीं था। कराने वाला बाबा है, उसका यज्ञ है, यज्ञ पिता बैठा है, कोई भी संकल्प करने की जरूरत नहीं है, सब एक्यूरेट चल रहा है। कभी भी कोई बात कहो तो दादी जानकी को एक दिन दादी ने कहा, कुछ बातें ऐसी यज्ञ की छोटी मोटी आती हैं, तो दादी जी ने कहा बातें तो भले हों लेकिन 90% 98% जो भी यहां बाबा के घर में आता है सब संतुष्ट होकर के, भरपूर होकर के जाता है, सब अच्छे से अच्छा चल रहा है। अगर 2% कोई नीचे ऊपर करते हैं वर्णन, उसका किया जाता है, 2% का वर्णन करते हैं, 98 जो अच्छा चला वो दिखाई नहीं देता लोगों। तो दादियां इतना उपराम रह करके, इतना न्यारे होकर के, कभी भी ये नहीं कहा ठीक नहीं है, सब बिल्कुल एक्यूरेट है। इतनी पॉजिटिविटी, इतना सकारात्मकता थी जो कभी भी उनके मुख से ये नहीं निकला, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। बाबा कराने वाला, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है, बाबा के बच्चे हैं। एक दिन कोई बात को लेकर के मैं गया दादी के पास, जानकी दादी के पास, ना दादी ये भाई इसने कुछ ऐसी गलतियां की हैं, ईश्वरी नियम के अनुसार इसको यहां से बाहर भेजना चाहिए। मैंने ऐसे बोल दिया। क्या बोलता है? बाहर भेजना चाहिए दादी, होना तो ऐसा चाहिए। कहते अच्छा, बाहर जाएगा तो सुधर जाएगा क्या? चुप हो गया। यहां वो सुधर नहीं सकता है, यहां तुम अपने संग का रंग उनको नहीं लगा सकते हो, बाहर जाने से ठीक हो जाएगा, तुम अपना संग दो, तो उसको ऐसी उसके प्रति भावनाएं रखो जो बदल जाए हो। कभी भी ये संकल्प नहीं करो ये बाहर चला जाए। अगर उसको जाना है, उसको धरणी नहीं रहने देगी, नहीं सुधार पाएगा तो अपने आप चला जाएगा, अपने आप जाए, तुम कोई निमित्त नहीं बनो। ये बहुत बड़ी दिल थी, ये उनके अंदर रहम की भावनाएं थी, दया की भावनाएं थी, हर एक के प्रति परिवर्तन की भावनाएं थी। तो ये सब भावनाएं होते हुए भी एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ करते। कई बार दादी को कहती थी, दादी बाबा कहता है कर्मातीत बन जाएंगे तो शरीर छूट जाएगा, तो अनुभव कैसे होगा कर्मातीत बनने का? दादी जानकी की और गुलजार दादी की बहुत रूह रिहान चलती थी, तो गुलजार दादी कहती दादी नहीं, शरीर में रह करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना। आप देखा उनको शरीर में रहते हुए उन्होंने कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर लिया, कोई भी कर्म बंधन में नहीं बांध सका, सब कुछ किया। सुबह देखो तो बिस्तर पर है, सोई हुई है, ड्रिप चल रही है, और शाम को देखो तो क्लास करा रही है। अभी देखो यहां है, अभी देखो लंदन में चली गई। ये बीमार है, बीमार है सब कह रहे हैं, और वहां उड़ रही हो विदेश में। इतनी विल पावर थी, इतनी शक्ति थी, शरीर की कोई परवाह नहीं, जहां बाबा ले जाए। आत्मा की इतनी पावर, और एक बाबा एक वृत्ता स्थिति, एक बाबा दूसरा न कोई, ये सब चिन्ह संपूर्णता के हैं, जिसमें कोई न देह आकर्षित कर सकती, न संबंध आकर्षित कर सकते, न कोई स्थान आकर्षित कर सकता। दादी के एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा गाड़ी डैमेज हो गई। हमारे भाइयों ने कहा दादी नई गाड़ी कोई ऑफर करा ले ले, क्या बोलते हो? इसी गाड़ी को रिपेयर करो, दादी इसी गाड़ी में बैठेगी, और अंत तक उसी गाड़ी को यूज किया। कोई भी साधनों की परवाह नहीं की, कोई ने ला करके एक बार दिया कोई गाड़ी, दादी देख करके मुझे नहीं चाहिए, साधनों ने आकर्षित नहीं किया। साधना पर इतना ध्यान कि एक दिन भी नमाज शाम का योग मिस न हो, और एक दिन भी मेरा अमृत वेला मिस न हो। भले बीमारी कारण रात को नींद न भी आए, लेकिन 4 बजे देखो तो बैठी बाबा के कमरे में योग कर रही है। तो इन दादियों ने अपने आप को इतना न्यारा प्यारा नष्टोमोहा बना करके, उपराम रह करके, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रह करके अपने आप को संपन्न बनाया, संपूर्ण बना लिया। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनी, और संपन्नता ही संपूर्णता का आधार है। जब हम सब अपने आप को हर विशेषता में, हर कला में संपन्न बना लेते हैं तो संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने, गुलजार दादी को तो देखा ही, अनुभव भी किया है, कुछ भी था लेकिन गुलजार दादी कभी भी बीमारी का वर्णन नहीं किया, था ही नहीं बीमारी। डॉक्टर आते थे, उनसे पूछती थी कैसे हो, डॉक्टर कहता दादी मैं आपकी तबीयत पूछने आया हूं, मेरा क्या है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हो? एक दिन मैं मिलने के लिए बॉम्बे में गया दादी से, मैंने कहा दादी बहुत दिन हो गए आपने कुछ बाबा का संदेश नहीं दिया है, आप लिखाओ मेरे को, मैं संदेश लिखने आया हूं। देखती रही ऐसे, दृष्टि देती रही, लिखाए नहीं। दादी लिखाना, नीलू बहन बहुत कोशिश किया, दादी कुछ लिखाए, कुछ बोले। जब मैंने बहुत कुछ बोलना शुरू किया, थोड़ा बोला दादी को, दादी बहुत दिन हो गए, इतने ब्राह्मण आपको याद करते हैं, देश विदेश में इतने बच्चे याद करते हैं, तो ऐसे बैठे बैठे ऐसे लगा बाबा के पास चली गई। हम दो ही जने थे, एक बहन भाई, तो दृष्टि देने लगे, ऐसे लगा कि ऐसे बाबा आ गए, चेहरा भर गया एकदम, बाबा एकदम ऐसे दृष्टि दे रहे हैं, देख रहा हूं। दृष्टि से ही सब कुछ कह दिया। और जब मैं वहां से उठ के आया तो बाद में बोलती, वो चला गया क्या? उसको बाबा की याद दे देना, भेज देना पत्र में लिख करके। ऐसे दादियों ने इस बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर ली, समय पर भी विजय प्राप्त कर ली, और जरा भी उनको कभी भी शरीर का कुछ भी हिसाब किताब है, उनको भोगना के रूप में भोगा नहीं, बड़ी खुशी से न्यारे प्यारे होकर के कंचन काया बना दी। तो हम सभी भी संपूर्णता की मंजिल के राही हैं, बनना है ना सबको संपूर्ण की, नहीं? जो भी बाबा हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम सब उसको प्रैक्टिकल में लाएं, कर्म करें, सेवाएं करें, लेकिन कहीं भी कर्म बंधन में न बांध दे, सेवा के संबंध में आते हुए भी सेवा बंधन न बन जाए, हद में न आ जाए। अगर हम सब हदों से पार चले जाएं, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, उपराम वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, यही संपूर्णता के चिन्ह है, यही वो लक्षण है जो हम सब धारण करके बाबा के समान बन सकते हैं। तो सभी बाबा के बच्चे बाबा के घर में आए हो मिलन मनाने के लिए, लक्ष्य रखना। बाबा कहते हैं अचानक कुछ भी हो जाए, अचानक हो जाए तो उसके पहले अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता, उसका अनुभव करना। हम सबको सिर्फ ब्रह्मा बाबा के समान तीन बातों का पहला पुरुषार्थ है, अटेंशन का है। एक, बाबा ने निराकार स्थिति का बहुत अच्छा अभ्यास किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, इससे देह भान गला, देहमान खत्म हो गया, और साथ साथ निराकार स्थिति से उनकी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल हो गई, पावन हो गई, इसलिए संपूर्ण निर्विकारी बन गए। सच्चे राज ऋषि की यही निशानी है। राज ऋषि माना अपनी कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य, और ऋषि माना वैराग्य वृत्ति। जब राज ऋषि आत्मा बनेगी तब संपूर्णता को प्राप्त कर सकेगी। तो हम सभी राज ऋषि बने। ब्रह्मा बाबा ने राज ऋषि के रूप में अपनी सेवाएं दी, अपने ऊपर राज किया, दूसरों पर नहीं। जब हम अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, आंख नाक हाथ मुख कान, ये कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं, तो राज्य अधिकारी स्थिति, स्वराज्य अधिकारी स्थिति कर्मेंद्रिय जीत बना देती है। कर्मेंद्रिय जीत बन करके फिर कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नहीं बनता। इसलिए कोई भी कर्म करो, अच्छे से अच्छा कर्म करो, बाबा करा रहा है करते चलो, लेकिन कर्म बंधन न बन जाए। और उसकी विधि क्या है? कराने वाले ने करा लिया, शुक्रिया बाबा आपका। तो जितना करावन हार की स्मृति में रह करके हम कर्म करेंगे, उतना कर्म में आते हुए बंधन से मुक्त रह सकते हैं। सेवा का बंधन नहीं, कर्म का बंधन नहीं, स्थान का बंधन नहीं, ऐसी स्थिति ही संपूर्णता की निशानी है। तो बाबा ने जो सेवाएं दी हैं, जहां पर भी सेवाएं दी हैं, सब कुछ करते हुए निराकारी, निर्विकारी, और फिर निर्विकारी बनने का भी कहीं अहंकार ना जाए, मैं योगी हूं, मैं निर्विकारी हूं, मैं पवित्र हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, निरहंकारी, ऐसे बाबा ने बन के दिखाया, संपूर्णता को प्राप्त किया। हम सब बच्चे सिर्फ उनके कदम पर कदम रख करके चलते हैं, कोई नया रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त किया, अव्यक्त बने, फरिश्ता बने, ऐसे हम बच्चे भी उनके कदम पर कदम रख करके, उनके समान बन करके, उनकी पालना का रिटर्न दें, यही बाबा की आस है। ओम शांति।
काम की है